الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے چاہے اس نیت سے ہی کرے کہ میں گناہ کر کے توبہ کر لوں گا اور توبہ واقعتاً کرے تو بھی توبہ قبول ہو جائے گی یہ ایک ایسا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے شیطان انسان کو دھوکے بہت دیتا ہے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو موت سے پہلے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے موت کے وقت قبول نہیں ہوتی اور دوسرا حدیث میں آتا ہے سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی یوم یاتی باب آیات ربک لا تنفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں واضح ہو جائیں گی اس دن کسی کافر کا ایمان قبول نہیں ہوگا اور نہ اس مومن کی نیکی قبول ہوگی جس نے اب تک ایمان میں نیکی نہیں کمائی تو مومن کے لیے توبہ کا دروازہ اور کافر کے لیے ایمان کا دروازہ بند ہو جائے گا یہ دوسری شرط ہے کہ اس سے پہلے پہلے توبہ کرے موت سے پہلے اور نمبر دو سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے حدیث میں آتا ہے روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک وقت آئے گا لوگ سو رہے ہوں گے رات بہت طویل ہو جائے گی اتنی طویل کہ لوگ پریشان ہو کر گھروں سے باہر نکل آئیں گے کہ سورج کیوں نہیں نکل رہا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہوگی جو سائنس کو چیلنج ہوگی انبیاء جو معجزے لے کر آتے ہیں نا وہ تمام کے تمام معجزے سائنس کو چیلنج کرتے ہیں جبکہ جادو سائنس کو چیلنج نہیں کرتا جادو خود سائنس کے تحت داخل ہے جادو کی بھی کوئی نہ کوئی سائنٹیفک لاجک ہوتی ہے تبھی جادو کا فن باقاعدہ یونیورسٹیوں میں پڑھایا بھی جاتا ہے جادو جو ہے نا جادو اس کی سائنٹیفک لاجک ہوتی ہے جو جادوگر جانتے ہیں میں اور آپ نہیں جانتے لیکن چونکہ ہم اس کو جانتے نہیں ہیں لہذا میں عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کی مثال ایسے ہے جس آدمی نے کبھی موبائل دیکھا نہ ہو پرانے زمانے کا آج سے 600-700 سال پرانا انسان لے آئے جنگل میں لائے اس کو اور وہاں سے فون ملا کے اپنے کسی دوست سے امریکہ میں بات کریں اور اسپیکر آن کر کے اس کو بھی سنائیں تو وہ کہے گا یہ جادو ہے وہ کیا کہے گا کہے گا ہم نے اپنے زمانے میں اس قسم کے کرتب دیکھے ہیں یہ جادو ہوتے تھے تو اس کو بھی کیا کہے گا وہ جادو ہے اسے نہیں پتا کہ یہ سب اس کی سائنٹیفک لاجک ہے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری بات کو وہ جو موبائل کے اندر ایسے سافٹ ویئر ڈلے ہوئے ہیں کہ اس کو ریڈیائی لہروں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے وہ ریڈیائی لہریں آسمانوں میں سیکنڈوں میں سفر کرتی ہیں وہ اللہ نے بنائی یہ ریڈیائی لہریں وہ انسان نے نہیں بنائی وہ اللہ کی بنائی ہوئی لہریں ہیں جن پر انسان مطلع ہوا ہے ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ سائنس کسی چیز کی موجد نہیں ہوتی ہم جو کہتے ہیں یہ سائنسدانوں کا کمال ہے سائنسدانوں کا اتنا بڑا کمال نہیں ہے یہ جو سائنسی چیزیں آج وجود میں آ رہی ہیں یہ سائنٹسٹ کا بڑا کمال نہیں ہے یہ سارے کمالات اس کائنات میں اللہ نے پہلے سے بنا کے پیدا کر کے چھوڑے ہوئے ہیں رکھے ہوئے ہیں اس کائنات میں سائنس اس پر مطلع ہو جاتی ہے اس کی مثال ہے یہ جو مقناطیسی لہریں ہیں آپ کو پتا ہے نا نارتھ پول اور ساؤتھ پول یہ پورا مقناطیس کی ایک لہریں ہیں جو 360 سال میں چکر مکمل کرتی ہیں اب یہ بڑی عجیب لہریں ہیں انسان کو ان لہروں کا کیسے پتا چلا انسان نے یہ لہریں ایجاد نہیں کی ہیں مقناطیسی لہروں سے آج بہت سارے کام لیے جا رہے ہیں تو جب جیسے ایکس ریز ہیں ہم ایکس ریز سے لیتے ہیں نا وہ مشین پر بندہ کھڑا کر دیا اس کے سارے گردے پھیپھڑے کاغذ پہ آ جاتے ہیں अब इंसान कहता है क्या साइंस का कमाल है, मेरे पित्ते में पथरी निकाल के दिखा दी इन्होंने, उसकी कैमरे से तस्वीर ले ली। साइंस का कमाल किसी हद तक है, लेकिन इतना नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। इसलिए कि जो एक्स रेज, जिसको एक्स का नाम दिया, ये वाली श्वाएं पहले से मौजूद हैं, जो हर चीज को क्रॉस करके गुजर जाती हैं, ये उनमें अल्लाह ने पहले से ताकत और सलाहियत रखी है। आप आवाज को देख लेना, आवाज जब मैं बात करता हूं तो मुंह से लहरें निकलती हैं, सौती लहरें, और ये लहरें इतनी ताकतवर हैं सिर्फ आवाज की कि ये दीवार को पार करके भी निकल जाती हैं। तभी आप इधर दीवार हो उधर आदमी हो, आप बात करें तो दीवार के उस पार भी थोड़ा जोर से बोलेंगे तो सुनाई देगा, हालांकि सामने इतनी मोटी दीवार है और लोहे की दीवार भी हो सकती है, लेकिन ये सौती लहरों में अल्लाह ने ताकत रखी है कि ये लहरें दीवार को फाड़ के निकल जाती हैं। और इन लहरों की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी जो जब हम बोलते हैं तो ये लहरें ऊपर नीचे होती हैं, तो इनकी इस तरतीब में भी फर्क नहीं आता। थोड़ा सा मौजू थोड़ा सा टेक्निकल हो गया है, लेकिन ये बताने समझाने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग आजकल साइंसदानों को खुदा समझ रहे हैं, खुदा समझ रहे हैं। देखें, ये दीवार के आर पार आपने कोई चीज पहुंचानी है, तो जब आप लेके जाएंगे ना, उसको धक्का लगा के उस बेचारे का इंचर पंचर ढीला हो चुका होगा जब वो वहां से निकलेगा, और वो तो निकलेगा ही नहीं। आप किसी साहब को कहें कि दरवाजा बंद रहे और इसको घुसेड़ दो यहां से, जाएगा नहीं। और अगर दीवार कमजोर हुई है, अभी गीला सीमेंट है तो निकलेगा तो, मगर उसके मुमकिन है एक आध बाजू, एक आध पसली, एक आध चांपे और फेफड़ा गुर्दा इधर ही रह जाए। मादी चीज है ना, मादी, लेकिन ये जो लहरें होती है ना, लहरें ये ना सिर्फ ये के क्रॉस कर जाती हैं, बल्कि जिस तरतीब से इनको छोड़ा गया था, इनकी तरतीब भी दाएं बाएं नहीं होती। तो ये अल्लाह का कमाल है, खालिक कायनात की एक सना साजी है कि उसने ऐसी अजीब गरीब लहरें पैदा की हैं। तो अब ये जो मिकनातीसी लहरें हैं ना, मिकनातीसी, पहले जमाने में लोगों को नहीं पता था ये क्या होती है, ये भी कोई लहरों की एक किस्म है जो इस सौती लहरों से भी ज्यादा ताकतवर होती है। तो इंसान ने ये लहरें ईजाद नहीं की है कि जंगलों में जाके या समंदरों में जाके एक चीज दरियाफ्त करके निकाल के लाए, बल्कि ये इत्तिफाकी तजर्बों के नतीजे में इस पर मुत्तले हुए हैं। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप पानी के गिलास में या पानी किसी कप में हो, उसमें अगर सुई उसके ऊपर रख दें, लोहे की सुई हो, ऐसे कि वो नीचे ना गिरे, तो वो सुई जो है ना हमेशा एक सिंक में जाके खड़ी हो जाएगी। अब पहली दफा जब किसी साइंसदान ने ये देखा, बहुत से लोगों को नहीं ये देखा होगा, लेकिन वो इस फील्ड के हैं नहीं, उनको उनको वो कहते हैं हमारी भला से इधर जाए सुई इधर जाए, हमने तो सुई से कपड़े सीने। अब दर्जी के साथ ये हजारों साल से हो रहा है, मगर उसने कभी इस पे गौर नहीं किया। अब कोई टेक्निकल किस्म का आदमी बैठा था, उसने देखा कि ये सुई गिरती है तो हमेशा एक सिंक में क्यों जाती है, इसकी दुम एक तरफ और इसकी नोक एक तरफ क्यों होती है, यकीनन कोई ताकत है जो उसको घुमा के वहां ले जा रही है। तो यहां से तजर्बे शुरू होते 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 बहुत सारे तजर्बे हुए, 100 साल 200 साल भी लग सकते हैं, 300 साल भी। एक आदमी तजर्बे करते करते मर गया, अपने बच्चों को सिखा के चला गया कि यहां तक मेरा तजर्बा, इससे आगे तुम करना। होते होते पता चला कि भाई नॉर्थ और साउथ पोल से ये लहरें निकलती हैं और ये लहरें हमेशा एक सिंक में नहीं रहती, 360 साल में घूम के दोबारा आ जाती हैं। साइंस एक बहुत बड़े राज पर मुत्तले हुई, फिर उन मिकनातीसी लहरों को जब्त कैसे किया जा सकता है, इससे बड़ा काम लिया गया। फिर रेडियाई लहरों का पता चला, भाई एक और लहरों की किस्म है कायनात में। ये जो साइंसदानों के तजर्बे होते हैं ना, ये लहरें बनाई नहीं जाती, लहरों पर मुत्तले होते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई शख्स सोने की चमक को देख के कहे कि क्या खूबसूरत मटेरियल है जो सुनार ने बनाया है, समझ आ रही है बात, कैसी जबरदस्त धात है, तो कहेगा ये बनाया नहीं है, मैंने खुद किसी दुकान से खरीदा है। तो आप कहेंगे भाई जिससे खरीदा है ना, उसने ये बड़ी कलाकारी दिखाई है कि लोहे को ऐसा खूबसूरत बना के दिखा दिया। तो वो कहेगा भाई मैंने तो खुद फला जगह से खरीदा है। होते 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 आप आखिर में कहां पहुंचेंगे, जिस आखिरी आदमी के पास पहुंचेंगे वो कहेगा बनाया मैंने भी नहीं है, खुदाई के दौरान ये चीज दरियाफ्त की है मैंने, बनी बनाई पहले से मौजूद थी। नहीं आ रही मेरा ख्याल आवाज, बनाया किसने, अल्लाह ने बनाया। खुदाई के दौरान कोई ना कोई मजदूर किसी जमाने में उसने वो उसने खोदा था चूना निकालने के लिए, नमक निकालने, उसको क्या पता जमीन में ये भी होता है। आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो पहला कुदाल पैदा हुआ था ना कुएं खोदने वाला, वो तो ये समझता था कि भाई जमीन को खोदो पानी निकलता है। एक दिन उसने देखा कुछ सफेद सफेद चीज है तो अंदाजा हुआ चूना भी निकलता है। उसने कहा इसके क्या काम है, पता चला इसके तो बहुत सारे काम है, इसमें पानी डालो तो ये खोलना शुरू कर देता है। उसने कहा ये कुछ टेक्निकल किस्म की चीज लगती है भाई। तो ऐसे चूने को किसी चीज से मिला के देखा, ये बन रहा है किसी चीज से मिला, ये सारे तजर्बे होते होते नित नई चीजें वजूद में आती रही। इनमें से कोई भी चीज का पैदा करने वाला इंसान नहीं है, क्रिएटर इंसान नहीं है, बनाने वाला इंसान नहीं है, ये सारी चीजें खुदा ने पहले से जमीन में पैदा की है। तांबा भी, व अनजलनल हदीद फीही बासुन शदीद व मुनाफिउ लिन्नास, फरमाइए लोहा कैसी जबरदस्त चीज है, फौलाद कैसी जबरदस्त चीज है, ये तुमने नहीं बनाई। आज जो हम कहते हैं ये क्या जबरदस्त ट्रेन है, फौलाद की बना दी, उसको पिघला के ऐसे चला दिया ऐसे चला दिया, और ये हवाई जहाज हवा में उड़ाया जा रहा है। तो अल्लाह फरमाते हैं ये सारा मटेरियल पैदा किसने किया है, अल्लाह ने पैदा किया जमीन के अंदर। तो इसी तरह ये लहरें भी अल्लाह ने पैदा की है। ये जो रेडियाई लहरें हैं ना, रेडियाई लहरें, साइंसदानों ने देखा कि जानवर समंदर की तह में कछुए को देखा कि कछुआ अंडे देता है तकरीबन 500-600 किलोमीटर अपने मकाम से जाके दूर अंडे देगा, और जब उन अंडों से बच्चे निकलेंगे ये अंडे देके वापस आ गया। अब जब बच्चे निकले तो ये एग्जैक्ट उसी जगह पर पहुंचता है, इससे पता चला कि इसका बच्चों से लिंक और राबता मौजूद है। तो ये राबता कहां से, कोई लेटर आया, कोई मिस कॉल आई है, कोई खत आया है, कोई कबूतर खत लेकर आया समंदर में, कैसे पता चला इसको। ऐसे कई जानवरों का उन्होंने देखा कि 1000 किलोमीटर समंदर के अंदर उनका फासला होता है मगर उनके आपस में मुवासलाती रबते होते हैं। नहीं यार मेरा खाले बात। तो अब उन्होंने क्या किया, तजर्बे किए कि इसको पता कैसे चलता है, हमें पता नहीं चल रहा है, इस कंबख्त को पता चल गया कछुए को, है भाई, इस मछली को पता चल रहा है, हमें पता नहीं चल रहा, हम देख के आ रहे हैं इसने अंडे दिए कहां है, सही ना, इसके बच्चे कहां है और ये खुद कहां जाके बैठता है घुन्ना। कछुए को शक्ल से देखें कैसा घुन्ना लगता है बेवकूफ, लेकिन काम ऐसे ऐसे कर रहा है। हमारे एक रिश्तेदार जहाज पर होते हैं शिप पर, उन्होंने बताया कि उनके जहाज पर साइंसदान चढ़े हुए थे, कुछ आलात लेके कछुए पे फिट कर रहे थे वो। भाई क्यों फिट कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये देख रहे हैं कि ये कोई सिग्नल आ रहे हैं वहां से बच्चों की तरफ से, कोई मुवासलाती पैगाम, ये मशीन उस सिग्नल को कैच करने के लिए कि वो है क्या। तो अब देखो जब उन्होंने वो सिग्नल ट्रेस हो गए तो पता चला ये नहरों की एक और किस्म है जो इस कायनात में पाई जाती है। फिर कछुए को काट पीट के देखा इसके अंदर क्या लगा हुआ है कि वो लहरें हमारे दिमाग में नहीं आ रही, इसके अंदर आ रही है वो, समझ आ रही है बात। तो पता चला कि इसमें ये पुर्जे हैं, ये पुर्जे उन लहरों को कैच कर लेते हैं, उसकी नकल मारी वैसे ही पुर्जे ईजाद कर लिए। मैं कछुए की एक मिसाल दे रहा हूं, मुमकिन है मछली पे तजर्बा किया हो या किसी और जानवर पे किया हो, लेकिन अक्सर चीजें वो हैं जो यानी जो किसी तजर्बे के नतीजे में वजूद में आई है। बल्कि हकीकत यह है कि 99% ईजादात साइंसदानों की वो हैं के ईजाद कुछ और करने चले थे और हो कुछ और गया, यानी उनका वो इरादा ही नहीं था बल्कि कायनात की एक और उजूबे पर वो मुत्तले हो गए कि ये भी होता है इस कायनात। जैसे वो दर्जी तो सुई से कपड़े सीने चला था ना, लेकिन उसने देखा इत्तेफाक से पानी में गिरी, दर्जी में कुछ साइंस के जरासीम भी पाए जाते थे, जापान का दर्जी होगा कोई, तो अब उसने देखा ये इधर ही को क्यों घूम रही है भाई, इधर ही को क्यों घूम रही है। फलसफी आदमी जो होता है ना, फलसफी, वो हर जगह कुछ ना कुछ टेक्निक लड़ाता है। एक मंतिकी और फलसफी पहुंच गया गांव, उसने देखा कि ये बैल जो है ना उसको चक्की के घुमा रहे हैं, आंखों पे पट्टी है और बैल के गले में घंटी बंधी, बैल जो है ना वो तो कोलू का बैल घूम रहा है, उसकी आंखों पर पट्टी। पूछा भाई आंखों पर पट्टी क्यों बांधी हुई है, कहा ताकि इसको ये ना पता चले कि मैं इधर ही घूम रहा हूं एक घंटे से। बैल ये समझता है कि मैं किसी लॉन्ग ड्राइव पे निकला हूं, आज जो है ना मेरा मालिक मुझे लेके जा रहा है इधर, ये हाईवे की तरफ लेकर जा रहा है लॉन्ग ड्राइव, वो चलता रहता है। तो ये पट्टी की वजह से समझ आ गई, घंटी क्यों बांधी हुई है। जी घंटी इसलिए बांधी हुई है कि ये रुक जाएगा ना तो पता चल जाएगा मालिक को, घंटी की आवाज आएगी तो इसका मतलब है चल रहा है। तो फलसफी कहता है कि अगर ये बैल खड़े खड़े गर्दन हिलाना शुरू कर दे है भाई, अगर ये बैल खड़े खड़े गर्दन हिलाना शुरू कर दे तो वो देहाती कहते हैं ये बैल है, इसने मंतिक नहीं पढ़ी, मंतिक आपने पढ़ी है, ये बैल है इसने मंतिक नहीं पढ़ी कि ये खड़े खड़े गर्दन हिलाने शुरू कर दे। तो मैं बता रहा था बाज लोग का दिमाग बैल जैसा होता है, उन्हें जिस रूट पे चला दो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, उनकी बला से सुई इधर को घूम रही है, इधर को कछुए अंडे अंडे वहां दे रहा है, 1000 किलोमीटर के बाद भी उसका अपने बच्चों से मुवासलाती रास्ता है नहीं है, उन्हें इससे कोई गरज नहीं। बाज होते हैं वो सोचते हैं कि भाई ये क्यों हो रहा है, गौर व फिक्र करते हैं, तो जो गौर व फिक्र करते हैं वो कायनात के राज पर मुत्तले होते चले जाते हैं। तो इसी तरह साइंस ने तजर्बे किए तो पता चला कि रेडियाई लहरें भी होती हैं, एक्सरेज भी होती हैं, और मालूम ही अल्ट्रासाउंड में जो रेज है वो अलग किस्म है, दर्जनों किस्म की रेज पर मुत्तले हुए, उन रेज में ये ताकत। अब ये जो हम जो बात करते हैं ये अक्सर रेडियाई लहरों के जरिए पैगाम पहुंचता है, मैं यहां से अमेरिका कॉल करूंगा 2 मिनट में उसकी बात, बल्कि 2 मिनट में भी 3-4 सेकंड लगते हैं उसकी आवाज यहां से यहां पहुंचने में। तो ये आवाज को यहां से वहां से यहां पहुंचाने में साइंस का कमाल नहीं है, ये उस सवारी का कमाल है जिस सवारी पर बैठकर आवाज वहां से यहां आती है, वो लहरें, समझ आ रही है बात। और ये लहरों का खालिक कौन है, ये अल्लाह ताला है, ये साइंस ने इजाद नहीं किए ये लहरें, साइंस ने उन लहरों को काबू पाने का सलीका और तरीका सीखा, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। और ये अक्सर जो तरीके सीखे हैं वो भी तरीके बनाए नहीं है, बल्कि उस तरीकों की भी मिसाल कायनात में मिलती थी, जानवरों में या मुख्तलिफ जगहों पर पौधों में मिलती थी, वहां से वो तरीके नकल मारी है, उसकी कॉपी है सब कुछ। मैं अक्सर बयानात में एक बात कहता हूं कि हमें जो डिजिटल कैमरे के जो माहिरीन हैं इंजीनियर, उन्होंने खुद बताया, बराह रास्त मैंने सुना है कि ये जो डिजिटल कैमरा है ना, डिजिटल कैमरा जिसपे आज लोग हैरान होते हैं कि किसी के सामने रखो, सत्तार भाई के सामने रखो, बिल्कुल सत्तार भाई आ रहे होंगे अंदर, गफ्फार भाई के सामने रखो 100% गफ्फार भाई, कैमरा ऐसा हूबहू ऐसी तस्वीर बनाता है, जर्रा बराबर भी आपके पर्दे पे पड़ रही है जो लेंस है, जब इस पे पड़ती है तो रोशनी होती है, अंदर ऐसे आलाप लगे आंख में कि उस रोशनी की लहरों को मिकनातीसी लहरों में तब्दील कर देते हैं, वो आलाप कन्वर्ट कर देते हैं, ये सारा कमाल हो रहा है। अब जब कन्वर्ट करते हैं तो होता यह है कि वो लहरें जब दिमाग की तरफ पहुंचती हैं, पीछे की तरफ पहुंचती हैं, तो अंदर ऐसे आलाप लगे हैं कि फिर उन लहरों को दोबारा रोशनी की लहरों में तब्दील कर देते हैं वो, यानी रिवर्स कर देते हैं उस अमल को। नहीं यार, बात समझ, थोड़ा फिजिक्स का सबक हो रहा है, वो क्या कर देते हैं उस अमल को, रिवर्स। जब रिवर्स किया तो जैसे बंदा वहां था वहीं, लेकिन वो रिवर्स ऐसा करते हैं कि वो उल्टा हो जाती, तस्वीर उल्टी बनती है, यानी जब दिमाग के पर्दे पे जो तस्वीर बनती है आंख के पर्दे पे, वो ऐसे बनती है कि टांगे ऊपर सर नीचे, क्योंकि उल्टा कर दिया ना उसने, दिमाग फिर उसमें सोचने समझने की सलाहियत है, वो उसको क्या करता है, घुमा के सीधा करता है, भाई ये बैठे हुए तो ऐसे थे, ये उल्टे क्यों हो गए, तो वो सीधा कर देता है उसको। तो जब ये पूरी तहकीक, कई साल लगे इस तहकीक पर, तो उन्होंने कहा हम भी एक ऐसा इसकी नकल मारते हैं और उसमें वही आलाप नसब करते हैं कि इन लहरों को वो मिकनातीसी लहरों में या बर्की लहरों में तब्दील कर दे। तो जब नकल मारी तो थोड़ा सा धुंधला धुंधला आया, सतार भाई के 2 पांव एक हाथ पुर्जा गायब नजर आ रहा था, लेकिन आ रहे थे, तो अंदाजा हो गया कुछ मामला सेट बैठ रहा है। तो उन्होंने कहा आंख की अभी पूरी मुशावत नहीं हुई है, कुछ गड़बड़ हो रही है, पूरा पूरा नाप तोल के बहरहाल होते होते 50 साल 60 साल 100 साल, कैमरे की तारीफ बहुत तवील है, अल्लाह ताला को पानी के एक कतरे में, पानी के एक नापाक कतरे में 2 कैमरे लगा देते हैं, सही है ना, 9 महीने के अंदर, और उस कैमरे में ना शीशा इस्तेमाल हुआ, ना बजरी, ना रेत, ना बैटरी, गंदम की रोटी इस्तेमाल हुई है उसको बनाने में, मां वो गंदम की रोटी खाएगी, समझ आ रही है बात, और उस रोटी से मां का खून भी बनेगा, उस खून से बच्चे को ताकत और तवानाई मिलेगी, उसी ब्लड से बच्चे के हाथ पांव बन रहे हैं, दिल दिमाग जिगर गुर्दे फेफड़े सब चीजें बन रही है, और उसी से बच्चे के डिजिटल कैमरे भी फिट हो रहे हैं, और उन कैमरों के पीछे जो तारों का गुच्छा होता है ना डिजिटल कैमरे में, बिल्कुल आंख के पीछे लाखों तारे हैं जो दिमाग तक पहुंच रही है, जो सिग्नल लेती है दिमाग को, उन तारों में से एक भी डैमेज हो जाए तो जैसे डिजिटल कैमरे की कोई तार दाएं बाएं आगे पीछे हो जाए तो कैमरा बर्बाद हो जाता है, बिल्कुल आपका हिसाब इससे भी ज्यादा हसास है, इससे भी ज्यादा हसास है। तो इतनी सारी तारों के गुच्छे अल्लाह ने फिट कर दिए, और ये सारी तारें बनाई किससे, रोटी से, सरकारी गंदम से बना रहा है, हाथ भी पांव भी दिल भी दिमाग भी जिगर भी गुर्दे भी फेफड़े भी, तभी मैं ये कहता हूं कि दुनिया में कोई बेवकूफ ऐसा नहीं है जो कहे कि डिजिटल कैमरा खुद से बनाए इर्तिकाई, जैसे डार्विन कहता था ना तरक्की कर करते इंसान भी खुद से बन गया करोड़ों साल में। तो भाई एक कैमरा जो एक इंसानी आंख के मुशाबे है, वो कैमरा खुद से नहीं बना, सैकड़ों सालों की इंसानों की मेहनत है तब इंसानी आंख की नकल मार के वो इस काबिल हुआ है, उसको बनाया गया है। तो ये इंसानी आंख खुद से कैसे बन सकती है, समझ में आ रही है बात? जबकि ना इसकी बनाने में बजरी का इस्तेमाल हुआ, ना मिट्टी का इस्तेमाल, ना पानी का इस्तेमाल, ये रोटी से बनाई जा रही है। पराठा खाएगी पराठे से बन रही है, अंडा खाएगी अंडे को भी अल्लाह आंख में लगा रहे हैं जाके। हामला औरत जो जो बच्चे की मां बनने वाली होती है, दूध पिएगी उससे भी बच्चे की आंखों में जाके लगेगा वो दूध, और वो जनाब गोश्त खाएगी तो उससे भी आंखें बनेंगी। कुछ भी खा ले उसको कैमरे के पुर्जे बनाना, ये किसका काम है? अल्लाह का काम। तो अब जब साइंस ने डिजिटल कैमरा बनाया ना, तो ये किसकी नकल मारी? इंसानी आंख की। तो इसी तरह सारी इजादात हैं, ये जो आजकल मेडिकल साइंस इतने उरूज पर है, ऐसी ऐसी दवाइयां बनी, आपने इधर ऑगमेंटन की एक गोली खाई, अभी आपके जनाजे का ऐलान होने वाला था और आपने ऑगमेंटन की दो गोलियां अगर खा ली 650 एमजी की, आप दूसरों का जनाजा पढ़वा रहे हैं, ठीक है? ऐसे फिटफाट होकर भागते हैं आप। तो ये ऐसे ही नहीं हो गया, ये 90%, ये तो मैंने खुद एक साइंसदान की जबान से सुना है इंटरनेट पर, उसने बाकायदा तहकीक की कि जानवरों अक्सर दवाएं वो हैं एलोपैथिक की जो जानवरों को देखकर ईजाद की गई हैं, कि जानवर किस बीमारी में क्या खाता है। बाकायदा दिखाया रीछ के पेट में दर्द हो रहा है जंगल में, रीछ परेशान हो रहा है। आप वो हमारी तरह तो नहीं है ना कि हम क्या रीछ के पेट में हो रहा है, मेरे पेट में थोड़ी हो रहा है, मुझे क्या। अंग्रेज ये सोचता है कि इसके पेट में जब दर्द हो रहा है तो इसके इतना नहीं होगा जितना मेरे पेट में हो रहा है। अंग्रेज के पेट में क्यों हो रहा है कि इसके पेट में एक तो हो क्यों रहा है, और ये इस पेट के दर्द के लिए करेगा क्या ये। तो जब तक उनको ये ना पता चल जाए रीछ पेट में दर्द के इलाज के लिए क्या खाता है, उस वक्त तक अंग्रेज के पेट का दर्द सही नहीं होगा, लिहाजा वो रिसर्च करते हैं। और हम अगर रिसर्च करना भी चाहें तो हमारे कैमरे की बैटरी खत्म हुई भी होती है और चार्ज करने के लिए हमारे पास बिजली नहीं। हम अगर करना भी चाहें ना, तो हमारे केईएससी वालों ने ऐसे मसाइल खड़े किए हुए हैं कि वो हमें कुछ कर ले, बिजली जब नहीं है तो आप क्या करोगे भाई, कुछ भी नहीं कर सकते, ना गैस ना बिजली ना पानी, रेडियाई लहरों पर गुजारा चल रहा है, सही है ना, बरकी शुआओं पर गुजारा चल रहा है हमारा, शमसी तवानाई पे। ये तो शुक्र करो हमारे मुल्क में सूरज निकलता है, समझ रही बात, यूरोप में नहीं निकलता। अगर हमारा भी वैसे ही होता ना, तो थोड़ी बहुत जो शमसी तवानाई से हम चल रहे हैं ये तवानाई भी ना होती हमारे पास। तो खैर, उन्होंने दिखाया कि जो रीछ है, रीछ उसके जब पेट में दर्द हुआ, देखें ये साइंस का सबक नहीं हो रहा, ये जो मैं बातें कर रहा हूं ना, ये बातें साइंस इस हवाले को किसी और अंदाज से, साइंसदान जब ये बातें करता है ना साइंसी, उसका मौजू कुछ और होता है। और मौलवी साहब जब ये बात करते हैं, ये कुरान जब साइंस की बातें करता है तो कुरान का मौजू कुछ और होता है। कुरान अल्लाह की ताकत और कुदरत बयान करने के लिए साइंस की बातें करता है। कुरान में बहुत सारे साइंसी हकायक हैं जो डॉक्टर जाकिर नाइक के मुंह से आप सुनते रहते होंगे, ये है कुरान में, ये है, लेकिन वो इसलिए नहीं है कि उससे साइंसदान इस्तेफादा करें, बल्कि वो इसलिए है कि उससे लोग अल्लाह के करीब हो जाएं, अल्लाह की अजमत और जलाल उनके दिलों में बैठ जाए, वो इसलिए। तो बात एक ही होती है लेकिन मकासिद में फर्क होता है। तो दिखाया कि रीछ के पेट में दर्द है, उन्होंने कैमरे लगा दिए, भाई करता क्या है, देखा रीछ जाते जाते कहीं गया और उसने एक जगह खोदना शुरू की, एक अंदर से जड़ी बूटी निकाली और चबाना शुरू कर दी। वो तो उनके तो पेट में दर्द हो रहा था कि ये क्यों हो रहा है भाई, ये इसने आज जड़ी बूटी क्यों खाई, तो पता चला कि इस जड़ी बूटी में पेट के दर्द का इलाज। बंदर को देखा गया कि बहुत सारी बीमारियों में बंदर ऐसी जड़ी बूटियां या ऐसे पत्ते खाना शुरू कर देता है जो आम नॉर्मल हालात में उसकी खुराक नहीं होता। और याद रखो, रीछ या बंदर या जितने जानवर अगर कोई चीज खा रहे हैं तो ये उनकी रिसर्च नहीं है, समझ आ रही है बात, ये उनकी तहकीक नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ने उनके दिमागों में ये चीज डाल दी है जिसमें वो मजबूर है, इसमें उनका जाती कमाल जरा बराबर भी नहीं है। लिहाजा इंसान जो उनसे ये चीजें सीख रहा है तो इसमें इंसान का कमाल सिर्फ इतना है कि इसमें सीखने का मादा है, मुजिद उन दवाओं का, उन दवाओं को ईजाद करने वाला इंसान नहीं है, انسان کو موجد اور کریٹر مجازن کہا جاتا ہے کہ کیونکہ پہلے یہ نہیں تھی، اب انسان نے محنت کر کے لے آیا، اس لیے مجازن کہا جاتا ہے. حقیقت میں ان چیزوں کا تمام، سائنسی چیزیں ہوں یا یہ ایلوپیتھک سے جن چیزوں کا تعلق ہے، ان تمام چیزوں کا موجد حقیقت میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کی ذات ہے جس نے یہ ساری چیزیں کائنات میں پیدا کی ہیں. بات کہاں سے کہاں چلی گئی، پھر یہ ادھر آیا کس طرف سے میں، یہ جو جی ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس کی وجہ کیا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو سائنسی ترقی ہے نا، اس کو پرانے زمانے کا آدمی دیکھ کے کیا کہے گا، جادو. نئے زمانے کا آدمی کہے گا جادو نہیں ہے. آپ بھی کورس کریں یونیورسٹی میں، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا یہ ہوتا کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات، یہ ایسے ہوتا ہے یہ سارا کچھ. تو جادو کی بھی کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے، جو جادوگر جانتے ہیں یا سائنسدان جانتے ہوں گے، عام آدمی نہیں جانتا. لیکن جو پیغمبروں کا معجزہ ہوتا ہے اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہوتی، سائنس اس کے سامنے عاجز ہوتی ہے. یہی فرق ہے معجزے میں اور جادو میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. جادو میں بھی عجیب و غریب چیز آپ دیکھ لیں گے، ایک چیز رسی کو سانپ بنا دیا، جادوگر کر لیتے ہیں یہ. تبھی آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لاٹھی کو سانپ بنایا ہے، یاد اسپیکر کی آواز جو ہے نا اس سے مجھے گلا بہت پھاڑنا پڑ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ والا ہے یا دوسرا ہے؟ یہ والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لاٹھی کو زمین پہ پھینکا، وہ لاٹھی کیا بن گئی؟ سانپ. اللہ نے حضرت موسیٰ کو یہ معجزہ دیا کہ جاؤ فرعون کو یہ معجزہ دکھاؤ. جب فرعون اور اس کے درباریوں کو دکھایا گیا تو سب نے فوراً کیا کہا؟ جادو ہے. ان ھذا لساحر علیم، یہ موسیٰ جادوگر ہے اور معمولی نہیں، بہت بڑا جادوگر ہے. کیونکہ عام جادوگر ہر جگہ جادو نہیں دکھاتا، خاص اپنے میدان میں دکھاتے، کہ جہاں چاہے دکھا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فرعون پر عذاب نازل نہیں کیا کہ اس نے نبی پر بہتان لگایا، بلکہ فرعون کو موقع دیا کہ میں جادوگروں کی زبان سے کہلواؤں گا کہ یہ جادو نہیں ہے. کیونکہ ممکن ہے تجھ پر معاملہ مشتبہ ہو جائے، جادوگر جادو کی حقیقت کو جانتے ہیں، اگر وہ گواہی دے دے کہ یہ جادو نہیں ہے، پھر تو ماننا پڑے گا نا. پھر ایک اشکال یہ ہوگا، ممکن ہے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے آپس میں کوئی مکمکا کیا ہو جادوگروں نے، ہو سکتا ہے کوئی مالی مفاد ہو کہ اے موسیٰ ہم تجھے کہہ دیں گے کہ تو جادوگر نہیں ہے اور تیری نبوت کا چرچا ہو جائے گا، تجھے حکومت مل جائے گی، تو کچھ سیٹیں ہمارے لیے بھی خالی کر دینا. جھوٹی گواہی کا احتمال تو تھا نا کہ جادوگر حضرت موسیٰ کے حق میں گواہی دے. جھوٹی گواہی کیوں دیتا ہے انسان جب کوئی ذاتی مفاد ہوتا ہے؟ تو اللہ نے فرعون کے ذریعے جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کٹوا کے جب انہوں نے گواہی دی نا کہ موسیٰ سچے ہیں، یہ جادو نہیں ہے، تو فرعون نے کہا 24 گھنٹے کے اندر اندر سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا ہاتھ پاؤں کاٹ کے. تو جادوگروں نے کہا ہم اس کے لیے تیار ہیں. اس سے پتا چل گیا کہ جادوگروں کا اس گواہی میں کوئی مفاد بھی نہیں تھا، ورنہ وہ قتل ہونے کے لیے کیوں تیار ہو جاتے. تو اللہ پیغمبروں کی نبوت کو براہین قاطعہ کے ذریعے، مضبوط دلائل کے ذریعے ثابت کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے اس میں ان کا ذرہ برابر کمال نہیں ہے اور اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے. یہ خالص خدا کا کام ہے جو عقل میں آنے والا نہیں ہے، اور سائنس یہاں عاجز آ جاتی ہے. ہر پیغمبر کو ایسے معجزے دیے گئے. ہم اگر پیغمبروں کے معجزوں کی طرف دیکھیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جس قوم میں جس قسم کے فنون کی ترقی تھی، اللہ نے پیغمبر کو معجزہ اسی حساب و کتاب سے دیا ہے. کیونکہ وہ جس فن میں جو قوم ترقی کرتی ہے نا، وہ اس فن کے حدود اربعہ کو اور اس کی حقیقت کو جانتی ہے. اس کی مثال آپ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں علم طب نے بڑی ترقی کی. جو حکیم جالینوس اور اس قسم کے حکیم گزرے ہیں نا، سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے ہیں. ایسی دوائیں ایجاد ہو گئی تھی اس وقت، حکیموں کا فن بڑی ترقی پر تھا. آپ یوں کہہ سکتے ہیں اس زمانے کے ڈاکٹر، وہ جانتے تھے کون سا مرض قابل علاج ہے اور کون سا قابل علاج نہیں. جو ڈاکٹر نہیں ہوتے، حکیم نہیں ہوتے، ان کے سامنے آپ کچھ بھی دعویٰ کر دیں، تبھی آپ اناڑی حکیم دعویٰ کرتے ہیں نا جاہل عوام کے سامنے، ایک ایسی دوا میں نے ایجاد کی ہے، 20 سالہ شوگر کا ایک گولی کھا کے خاتمہ. बेवकूफों की लाइन लगी होती है उनके उनके मतलब के बाहर, ठीक है। डॉक्टर कहते हैं ये मुमकिन नहीं है, जो पढ़ा लिखा हकीम होगा कह रहा मुमकिन नहीं है भाई, एक गोली से होता तो हम यहां बेवकूफ हैं जो क्लिनिक खोल के बैठे हैं। तो पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बनाना मुश्किल होता है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो दौर था उसमें इल्म तिब तरक्की पर था, उन्होंने बेशुमार बीमारियों की दवाएं ईजाद की, लेकिन वो जानते थे कि कुछ अमराज ऐसे हैं जिन अमराज की इतनी तहकीक के बाद भी कोई दवा ईजाद नहीं हो सकती, और अगर कोई करेगा भी तो वो किसी बड़े हकीम का बेटा होगा कि बाप दादा से उनकी रिसर्च चलती चली आ रही है, वो शायद ये काम कर ले। वो अमराज क्या थे? नंबर एक, जो शख्स पैदाइशी जिसके सर पे बाल उगे ना और जवान हो जाए और उसके सर पे बाल नहीं है, कोई दवा खा के उसके सर पे बाल पैदा, बोल लो भाई आपके तो हैं बेफिक्र रहे, उसके सर पे बाल पैदा नहीं हो सकते। एक होता है बाल थे मगर गिर गए कमजोरी से, उसको तो चलो कुछ डीजल की मालिश वालिश कर दी उसके सर पे, ठीक है ना, जैतून के तेल से नहीं निकल रहे, डीजल लगा के देख लो, पेट्रोल छिड़क के आग लगा दो, सारे जानवर मर जाएंगे उसके, ठीक है, ऐसे आदमी के सर पे आग लगा दो। तो कुछ भी कर लो, कुछ दवाएं खिला दो, कोई होम्योपैथी कोई अलग, शहद निकल आए और बाद लोगों के निकल भी आते हैं, लेकिन जो पैदाइशी जिसके सर पे बाल ना हो। एक छोटी सी अगर आप इजाजत दें तो मैं एक छोटा सा मसला बता दूं, है मौजू से हटके, लेकिन मैं ये इल्मी नुकात इसलिए कहता हूं कि ये अलग से मौजू बनाकर इनको बात नहीं हो सकती और ये फिर दिमाग में आते भी नहीं है। गंजा होना जो है ना, गंजा होना हमारे यहां बहुत से लोग समझते हैं गंजा होना बहुत सवाब का काम है, तभी दीनदार आदमी टिंड पे बड़ी फौर करता है। याद रखो, ये जो खानकाहों में बुजुर्गान दीन अपने मुरीदों को गंजा कराते हैं ना, ये कोई सवाब नहीं है, सुन्नत नहीं है, ये इसलिए कराते हैं ताकि ये फितने से बच जाए। बाल होते हैं तो शो मारने का अंसर होता है, फिर लड़कियों को छेड़ते हैं ये सारे, फिर जिना का खतरा, तो जिना से बचाने के लिए एक आजमाइश है, सर पे मशीन फिरवा दो, उस तरह फिरवा दो। तो ये एक आरजी चीज है, आरजी, असल शरीयत का हुक्म नहीं है। मैं इसलिए मजाक कर रहा हूं कि बाज लोग जहालत में मुब्तला हो जाते हैं, वो समझते हैं शरीयत में भी गंजा होने की कोई फजीलत है, तो शरीयत को तब्दील ना करें। आप अपने आप को तब्दील कर लें किसी भी वजह से, किसी हिकमत से इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन शरीयत को तब्दील ना करें। गंजा होना आजमाइश है, इसके बहुत सारे दलाइल है। नंबर एक, हदीस में आता है पिछली उम्मतों में तीन आदमी थे, इनमें एक गंजा, एक कोढ़ का मरीज और तीसरा गरीब। अल्लाह ने एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में भेजा कि इनको आजमाओ, फिर उसने आजमाया, गंजे से कहा तुम्हें क्या चाहिए, उसने कहा मेरे बाल चाहिए, दुआ की बाल निकल आए, तुम्हें क्या चाहिए जी मेरा कोढ़ का मरज ठीक हो जाए, ठीक हो गया, तुम्हें क्या चाहिए माल चाहिए जी भेड़ बकरियां तुम्हारी हुई, ठीक है ना। फिर आया तीनों को के पास गरीब बन के कि भाई ये भेड़ बकरियां मुझे दे दो, उसने क्यों दूं भाई, अब भूल गया कि इसकी दुआ की बरकत से अल्लाह ने हमें सब चीजें दी। दो आदमी उनमें नाकाम हो गए आजमाइश में, एक आदमी कामयाब हो गया। लंबी हदीस से मैं मुख्तसर सुना रहा हूं, लेकिन उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गंजे को किसके साथ जिक्र किया है? कोढ़ के मरीज के साथ, और बिल्कुल माल के लिहाज से कुछ भी नहीं, आजमाइश में है। तो पता चला कि गंजा होना भी क्या है, तभी तो वो कह रहा है मेरी सबसे बड़ी तमन्ना, फरिश्ता पूछ रहा है तुम्हारी सबसे बड़ी तमन्ना क्या है, कह रहे सबसे बड़ी तमन्ना क्या है, मेरे सर पे बाल उगाए। तो मेरे भाई बाल उगना तो जिनके नहीं है उनसे पूछो, तो जब अल्लाह ने आपको दे दिए तो आप सुन्नत कह कह के उसको काट रहे हैं, उसके सर पे उस तरह फेर फेर के कि सुन्नत है, तो ये आजमाइश है, सुन्नत नहीं है, समझ में आ रही है बात। दूसरी बात ये कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया हज और उमरे के मौके पर सर मुंडवाएं, जब तक एहराम नहीं खुलेगा जब तक सर नहीं मुंडवाया जाता, और हज और उमरे पर ऐसे कामों का हुक्म दिया जाता है जो आम हालात से हटकर होते हैं। देखो, आम हालात में सिले वाले लिबास पहनने का हुक्म है ना, हज में इजाजत नहीं है सिले वाले लिबास पहनने, कयास से हटाया जा रहा है, नॉर्मल रूटीन से हटाया जा रहा है, इम्तिहान लिया जा रहा है कि तुम, अल्लाह ताला अगर तुम्हें तुम्हारी नॉर्मल रूटीन से हटाने का हुक्म दे तो तुम हटते हो या नहीं हटते। तो इसलिए सिले हुए कपड़े उतरवा के दो चादरें पहनाई जाती है, कितने भी आप डिसेंट हैं सुबह थ्री पीस सूट और टाई में निकलते हैं और हर वक्त आप जो है ना सूट बूट में रहते हैं, लेकिन एहराम में जब तक आप हज कबूल नहीं होगा जब तक आप दो चादरें बगैर सिली भी ना पहन के जाए, और तभी एहराम से बाहर आते ही हुक्म क्या दिया जाता है, भाई अपने कौमी लिबास में आ जाओ, یہی حکم دیا جاتا ہے نا. یہ تو نہیں کہا جاتا ہے احرام کی فضیلت لہٰذا گھر بھی اسی حالت میں جانا. اگر اسی حالت میں گئے تو گھر والے پوچھیں گے کیا ہوا, واپس سعودیہ نے بھیج دیا, ابھی تک عمرہ نہیں کیا آپ نے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی طرح یاد رکھیں, احرام میں خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے. اس سے پتا چلا عام حالات میں خوشبو لگانے کا حکم ہے, ہے یا نہیں؟ احرام میں بال نہیں توڑ سکتے, حتیٰ کہ زیر ناف بال, بغلوں کے بال بھی نہیں توڑ سکتے. عام حالات میں کاٹنے کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ تو یاد رکھو حج عمرہ کے موقع پر جب تک احرام کھلتا نہیں, جب تک سر نہ مڑوا لیا جائے, تو یہ بھی آزمائش ہے. اس سے بھی پتا چل رہا ہے کہ عام حالات میں کیا حکم ہے. اصل حکم بال رکھنے کا ہی ہے. ہاں آپ کو کٹانے کا ویسے شوق ہے تو ٹھیک ہے کٹائیں, کوئی فرض واجب نہیں ہے بال رکھنا. یا آپ اس لیے کٹاتے ہیں کہ فتنے میں نہ پڑ جاؤں تو بھی ٹھیک ہے, بلکہ اس نیت سے کٹائیں گے تو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ, لیکن اس کو شریعت کا حکم نہ سمجھے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ حضرت علی کی سنت ہے سر مڑوا کے رکھنا, تو یاد رکھیں سنت وہ عمل ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو. اگر آپ یہ کہتے ہیں حضرت علی کی سنت, حضرت علی جو سر مڑوایا کرتے تھے وہ ان کا ذاتی عمل تھا. میں نے کہا فرض واجب تو نہیں ہے نا بال رکھنا. حضرت علی تو اس لیے بھی سر مڑواتے تھے, وہ فرماتے تھے کہ مجھے ان میں قوت بہت تھی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, بار بار غسل کرنا پڑتا تھا جنابت کا. تو فرماتے ہیں میں بار بار جنابت کا غسل اتنے بڑے بالوں میں نہیں, مجھے آدھے ہی تراسی مجھے اپنے سر سے دشمنی ہو گئی ہے, بال نہیں رکھتا میں. تو اگر کوئی اتنا طاقتور ہے, اس کو دن میں چار چار دفعہ غسل کرنا پڑتا ہے, اتنا طاقتور ہے, اور سر کے بال بار بار گیلے کر کے سکھانا مشکل ہے, تو منڈوا لے. لیکن میرا خیال ہے آج اتنا طاقتور کوئی بھی نہیں, مہینے میں ایک دفعہ غسل کی محبت آ جائے. اس پہ لوگ بڑے دوستوں سے فخر کر کے بتاتے ہیں بھائی اللہ کا بڑا فضل ہے. تو وہ صحابہ تھے حضرت علی تھے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھیں تراشنے کا حکم دیا, مونچھیں کٹانے کا حکم دیا, لیکن رکھنا جائز بھی ہے. اگر ہونٹ کا بالائی کنارا اگر کھلا رہے تو بڑی مونچھیں بھی رکھ سکتے ہیں, جو رکھتے ہیں نا ادھر سائڈوں پہ لے جائیں جتنی بڑی کر لیں آپ, جائز ہے. لیکن ہونٹ کا جو اوپر کا کنارا ہے وہ کھلا رہنا چاہیے, ہونٹ نہیں ڈھکنا چاہیے. لیکن افضل کیا ہے, اتنی کاٹی جائیں کہ موڑنے کے قریب ہو جائیں چھوٹی, جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صبح لتے ہیں لمبی لمبی مونچھیں تھی, ادھر سے پہنچ رہی تھی یہاں تک, اس کو تاؤ بھی دیتے تھے. تو ہم یہ کہیں کہ مونچھیں رکھنا سنت ہے کیونکہ حضرت عمر کرتے تھے, خلیفۃ المسلمین تھے, تو ہم کہیں گے بھائی حضرت عمر کا وہ ذاتی عمل تھا, چونکہ رکھنا بھی جائز ہے اس لیے حضرت عمر نے رکھ لی. لیکن جو اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے وہ کیا ہے, کٹائی ہے. تو کوئی رکھتا ہے جائز ہے, لیکن افضل کیا ہے. تبھی حضرت عمر کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن عمر, وہ اس معاملے میں اپنے والد کی اتباع کرتے تھے کہ میرے والد کتنی بڑی مونچھیں میں بھی رکھوں گا. وہ کہتے تھے بھائی نبی کی چھوٹی تھی تو وہ اسی وجہ سے. تو اسی لیے اگر کوئی چھوٹے بال منڈوانا چاہے, اس طرح پھیرنا چاہے بہت اچھی بات ہے, اس طرح پھیرے یا اس طرح پھیرے ہر طرح سے جائز ہے اس کے لیے.
باتیں کرنا شروع کر دیتا ایسے زندہ, تو اللہ نے قرب قیامت میں ایسا نہیں کہ زمین کو الٹا گھمانے کے لیے, سورج کو مغرب سے نکالنے کے لیے بہت سارے پروسیس ہوں گے, اور پہلے کچھ سگنل آنا شروع ہو جائیں گے, سائنسدان ہوشیار ہو جائیں گے, لہذا زمین کو کسی اسٹیشن پہ جا کے روک دیں گے بھائی ابھی الٹی گھومنے والی ہے, کچھ بھی ہو سکتا. کچھ نہیں, حدیث میں آتے ہیں رات کو سوئیں گے لوگ, اتنی لمبی رات کیا ہو گیا, سورج نکلتا نہیں ہے, تین دن تین راتوں کے برابر لمبی رات ہو جائے گی, پریشان ہو جائیں گے, ساری اس پورے عالم میں بے چینی اضطراب پھیل جائے گا, اور نتیجہ کیا نکلے گا, پھر لوگ کہیں گے سورج کہاں چلا گیا, سائنسی آلات جواب دے جائیں گے سورج کو کیا ہو گیا, بھائی کدھر غائب ہو گیا, خلائی سیارے جو آسمان میں چھوڑے ہوئے تھے کہاں گئے, وہ کوئی رپورٹ کیوں نہیں پیش کر رہے. پھر ایک عجیب منظر کائنات اس کائنات میں نظر ہوگا, لوگ دیکھیں گے سورج کہاں سے طلوع ہو رہا ہے, مغرب سے. اس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ یوم لا تم یوم یاتی بعض آیات ربک, جب تم اپنے رب کی یہ علامات دیکھ لوگے, لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل, آج کے بعد کسی کافر کی توبہ قبول نہیں, کافر کی توبہ قبول نہیں, کیونکہ اب دیکھ لیا. پہلے کہتے تھے نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا, یوں نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا معجزہ ہوگا, اور یہ پیش گوئیاں کیونکہ اہل اسلام ہی کرتے ہوں گے, اہل اسلام کے علاوہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ سورج مغرب سے نکلے گا, تو ساری دنیا کو پتا چل جائے گا کہ اسلام ایک 100% برحق مذہب ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اب کسی کافر کا ایمان قبول نہیں ہوگا, اور کسی مومن کی نیکی قبول نہیں ہوگی, یعنی توبہ مومن کی قبول نہیں. جیسے تھا اسی حال میں, تو یہ دو جو میں نے بتایا نا کہ موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی, اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ نصیب فرمائے, اور سورج جب مغرب سے نکلے گا اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی, اس سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ بات لمبی ہو گئی, لیکن یہ ساری تمہید اس پر تھی کہ سورج مغرب سے نکلے گا کیوں, اللہ کو کیا پڑی ہے سورج کو مغرب سے نکالنا. تو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کی پرانی عادت ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, یہ پرانی عادت ہے. اللہ تعالیٰ ایسے کام کرتے ہیں جہاں انسان عاجز ہو جاتے ہیں اپنی قدرت اور طاقت اور اپنے رسولوں کی رسالت کو برحق ثابت کرنے کے لیے, برحق ثابت کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. اچھا حدیث میں آتا ہے کہ یعنی روایات میں جو ہے سورج جب نکلے گا نا تو اب یہ نہیں کہ ہمیشہ, بلکہ جب زوال کے وقت تک سر پہ بلندی پہ پہنچے گا تو دوبارہ پھر ریورس ہو کے مغرب میں غروب ہو جائے گا, پھر معمول کے مطابق مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب ہوگا, یعنی ایک ہی دفعہ یہ واقعہ ہوگا, اور مغرب سے نکل کے جب بلندی پر آ کے پھر دوبارہ الٹا جا کے دوبارہ مغرب میں طلوع ہوگا, اس کے بعد پھر مشرق سے مغرب تک گھومتا رہے گا. بعض علماء نے ایک اندازہ لگایا ہے, یقینی بات نہیں ہے, وہ اندازہ مختلف نشانیوں کو دیکھ کے کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو تقریباً اس کے 125 سال کے بعد قیامت واقع ہوگی, لیکن یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے, کوئی اس کو نوٹ کر لے اور پھر اس کے بعد سے کیلکولیشن لگا کرنے شروع کر دے. علماء نے ایک اندازہ لگایا ہے, اور غالباً شاید تہذیب زیور میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ ایک نشانیاں دیکھ کے اندازہ لگایا کہ تقریباً 125 سال کے بعد, 123 سال کے بعد تقریباً قیامت واقع ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائی. یہ سوالات کافی آ گئے ہیں, یہ میرا خیال ہے بیان بہت زیادہ لمبا ہو گیا, تو یہ سوالات اگلے ہفتے کے لیے رکھیں, ٹھیک ہے, کافی وقت زیادہ لے لیے, اب سوالات لگے تو پھر اور ایک گھنٹہ کھینچ جائے گا, تو آئندہ ہفتے تھوڑا بیان یہ سوالات پہلے سے لا کے رکھتے ہیں, آپ اپنی جیب میں رکھیں ان کو, پڑھے نہیں آپ, اپنی جیب میں رکھیں, اور جب بیان کے لیے بیٹھوں تو پہلے مجھے یہ دکھا دیں یہ گھنٹی, تاکہ میں پھر بیان مختصر کروں اور ان سوالات کا جواب. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہاں رہی ہے